ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। तय समय पर ही निर्वाचन संपन्न होने पर शंका न करने का निर्वाचन आयोग ने किया आग्रह। स्थानीयतः निर्वाचन के लिए सभी स्थानीय तहों में निर्वाचन अधिकृत कार्यालय का किया गया संचालन। कल से शुरू होने जा रही माध्यमिक शिक्षा परीक्षा की संपूर्ण तैयारियां हुई पूरी। गौतमबुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आज से लाया गया संचालन में। भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नेपाल में भी स्वास्थ्य के सभी मापदंडों का पालन करने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने किया आग्रह। और अफगानिस्तान में हुए बम धमाकों में 30 से अधिक की मौत, 80 से अधिक हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले महानगर पालिका और उप महानगर पालिका के उम्मीदवारों के विषय में बैसाख 10 गते यानी कि शनिवार निर्णय करेगी। एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के निवास बालकोट में आज हुई नेकपा एमाले के केंद्रीय सचिवालय की बैठक ने ऐसा निर्णय किया। बैठक के बाद एमाले के उप महासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सचिवालय की बैठक में सातों प्रदेशों की कमेटी द्वारा की गई सिफारिश के विषय में विचार विमर्श हुआ और दूसरी बैठक शनिवार दोपहर 3 बजे के लिए बुलाई गई है। बैठक ने कल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस मनाने और कल ही तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासल तुलसीपुर ललितपुर में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने का निर्णय किया है। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक कल शुक्रवार दोपहर 2 बजे पार्टी केंद्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन ललितपुर में बुलाई गई है। बैठक में स्थानीयतः चुनाव में उम्मीदवारों के विषय में विचार विमर्श किया जाएगा। यह जानकारी नेपाली कांग्रेस के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़ेल ने दी। निर्वाचन आयोग ने स्थानीयतः के चुनाव की तैयारी अंतरिम चरण में पहुंचने की जानकारी देते हुए तय समय पर चुनाव संपन्न होने की बात पर शंका न करने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग द्वारा आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने कहा कि तय समय में चुनाव को संपन्न कराने के लिए आयोग की तरफ से सारी तैयारियां की जा रही है। आयुक्त भंडारी से मिली जानकारी के मुताबिक आवश्यक मतपत्रों व अन्य सामग्रियों की छपाई, हरेक पालिकाओं में निर्वाचन अधिकृत कार्यालय की स्थापना, दुर्गम जिलों में निर्वाचन सामग्री भेजने जैसे कामों को आगे बढ़ाया जा चुका है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने स्थानीयतः चुनाव के लिए सभी स्थानीय तहों में निर्वाचन अधिकृत कार्यालय को संचालन में लाया है। आयोग ने निर्वाचन आचार संहिता 2078 के तहत निषेधित निर्वाचन प्रचार सामग्रियों के उत्पादन और बिक्री वितरण को तत्काल बंद करने का नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ और नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आग्रह किया है। केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में स्थानीयतः चुनाव के दौरान दी जाने वाली सुरक्षा के विषय में विचार विमर्श किया गया है। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में चुनाव को सुरक्षित, निष्पक्ष और स्वच्छ बनाने के लिए अपनाए जाने वाली रणनीति के विषय में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल ने दी। कल से शुरू होने जा रही माध्यमिक परीक्षा एसईई की संपूर्ण तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस साल देश भर में 2007 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस बार सामान्य स्वास्थ्य मापदंडों को पूरा करते हुए भौतिक उपस्थिति में ही परीक्षा को संचालित किया जाएगा। ये जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष महाश्रम शर्मा ने दी। बता दें कि इससे पहले कोरोना महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2076 और 77 में विद्यालय में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही परीक्षा बोर्ड ने एसईई के नतीजों को प्रकाशित किया था। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने सभी लोगों से स्वास्थ्य की सभी मापदंडों का पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही मंत्रालय ने उन लोगों को जिनको कोरोना की वैक्सीन लिए हुए 3 महीने हो चुके हैं उन लोगों से बूस्टर डोज लगवाने का भी आग्रह किया है। इसका उल्लेख मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ संगीता कौशल मिश्रा द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक डॉ टेड्रोस अधानोमा ग्रेबियसस आज नेपाल आए हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खट्टीवाड़ा के निमंत्रणा पर ग्रेबियसस आज नेपाल आए हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर डॉ टेड्रोस को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डॉ रोशन पोखरेल लगायत के अधिकारियों ने स्वागत किया था। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि देश में विकास और सुशासन लाने में केवल एमाले पार्टी ही सक्षम है। आज काठमांडू में आयोजित केंद्रीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक में अध्यक्ष ओली ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में एमाले अच्छे परिणाम लाएगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हा, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गरौं। सबै प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न आनाकानी नगरौं।
नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक उपलब्धियों की रक्षा करने और प्रतिगमन के विरूद्ध पांच दलों का गठबंधन किया गया है। कैलाली गौरीगंगा में आज आयोजित आम सभा में अध्यक्ष प्रचण्ड ने कहा कि संविधान समावेशी लोकतांत्रिक गणतंत्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा अस्मिता की रक्षा करने के लिए प्रतिगमन को परास्त करने के लिए ही पांच दलों के बीच गठबंधन किया गया है। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बड़ू ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के महानिदेशक लीला प्रसाद शर्मा को बाजार अनुगमन को कार्य प्रभावकारी रूप से करने का निर्देश किया है। बता दें कि बाजार में अत्यावश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि और कुछ वस्तुओं के दिख रहे अभाव पर जनता द्वारा की गई शिकायत के बाद मंत्री बड़ू ने ऐसा निर्देश किया है। ललितपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में रहे सगरमाथा ऑक्सीजन प्लांट में विस्फोट हो जाने से दो लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह करीब 10 बजे हुए इस विस्फोट में भारत के 45 वर्षीय ब्रिजमोहन महतो और 25 वर्षीय राजकुमार महतो की मौत हो गई, जबकि विस्फोट में घायल हुए अन्य चार लोग इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। यह जानकारी काठमांडू घाटी के प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक संतोष सिंह राठौड़ ने दी। इसी बीच गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ ने इस हादसे के विषय में जांच पड़ताल करने के लिए संबंधित निकायों को निर्देश किया है। बता दें कि ऑक्सीजन भरने के दौरान यह दुर्घटना हुई थी। राष्ट्रीय गौरव के रूप में रही भैरहवा में निर्मित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल आज से संचालित हुई है। आज से संचालित नई धावन मार्ग से अंतरिक एयरलाइंस ने उड़ान शुरू की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जेठ दो गते से संचालित की जाएगी। ये जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक इंजीनियर प्रदीप अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि विमानस्थल की धावन मार्ग आज से संचालित हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आगामी जेठ दो गते बुद्ध जयंती के दिन से शुरू की जाएगी। काठमांडू के घाटी में पेयजल लिमिटेड ने काठमांडू घाटी में पानी वितरण के लिए आवश्यक तैयारी पूरा किया है। मेलमची का पानी रविवार सुबह तक महाकाल चौर में पानी जाएगी, ये जानकारी लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन शाक्य ने दी। अभी भी अधिकांश स्थानों में नया पाइप का परीक्षण बाकी होने से पुराना पाइप ही वितरण किया जा रहा है, ये जानकारी लिमिटेड ने दी। कंचनपुर के महाकाली प्रादेशिक अस्पताल में दवा की कमी हो गई है। बीते दो महीनों से अस्पताल के सामाजिक सेवा इकाई में दवा की कमी हुई है, ये जानकारी अस्पताल प्रशासन ने दी। रेडियो नेपाल की पूर्व उप निर्देशक सावित्री पांडे का 65 वर्ष के उम्र में कल रात निधन हो गया। वो लंबे समय से अल्जाइमर के मरीज थे। स्वर्गीय पांडे को दो बेटे और एक बेटी है। स्वर्गीय पांडे के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए रेडियो नेपाल के कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसी ने श्रद्धांजलि अर्पण किया, साथ ही शोक संतप्त परिवारजनों में संवेदना व्यक्त की। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में हुए दो धमाकों में कम से कम 31 की मौत हो गई और 85 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पहला धमाका मजारे शरीफ शहर में एक मस्जिद के नजदीक हुआ। एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि इस धमाके में कम से कम 11 की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दूसरा धमाका कुंदूज शहर में एक पुलिस थाने के नजदीक हुआ। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक इस धमाके में भी और अन्य लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। अफगान न्यूज आउटलेट टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मजारे शरीफ में एक सिया मस्जिद के पास पहला धमाका हुआ था। ये सिया समुदाय के बड़े मस्जिदों में से एक था। इस आउटलेट ने घायलों की संख्या को कम से कम 87 बताया है। बता दें कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट समेत दूसरे सुन्नी चरमपंथी संगठन अक्सर सिया समुदाय को निशाना बनाते हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तय समय पर ही निर्वाचन संपन्न होने पर शंका न करने का निर्वाचन आयोग ने किया आग्रह है। स्थानीय तह निर्वाचन के लिए सभी स्थानीय तहों में निर्वाचन अधिकृत कार्यालय का किया गया संचालन। कल से शुरू होने जा रही माध्यमिक शिक्षा परीक्षा की संपूर्ण तैयारियां हुई पूरी। गौतमबुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आज से लाया गया संचालन में। भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नेपाल में भी स्वास्थ्य के सभी मापदंडों का पालन करने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने किया आग्रह है। और अफगानिस्तान में हुए बम धमाकों में 30 से अधिक की मौत, 80 से अधिक हुए घायल। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।